हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। स्वीटी कपड़े लेकर अरुण के कमरे में गई। सुनैना पहले ही अरुण को कपड़े लाने के लिए कह चुकी थी। अरुण ने पुराने कपड़े नहीं पहने थे, वो सिर्फ तौलिया बांधे हुए शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था, साथ ही चेहरे पर लगे काले पीले निशान भी देख रहा था। क्या है यार ये सब, फालतू में इतने थप्पड़, कुछ किया भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन आखिर ये सब किसने किया होगा? अरुण शीशे में अपना चेहरा देखते हुए खुद से सवाल कर रहा था, तभी स्वीटी आई और उसे बिना कपड़ों के देखकर जोर से चिल्लाई, आह क्या है ये सब, कपड़े नहीं पहने तो वॉशरूम में ही रहना चाहिए था, ऊपर से डोर लॉक भी नहीं करते हो तुम। स्वीटी की आवाज़ सुनकर अरुण का ध्यान उसकी ओर गया। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, अरे बिल्कुल नेकेड तो नहीं हूँ, तौलिया तो लपेटी हुई है लोअर बॉडी पर। हाँ तो क्या बड़ा एहसान किया है, बाकी तो कुछ नहीं पहना ऊपर नीचे। स्वीटी अपना चेहरा दूसरी ओर किए हुए बोली, कैसे पहनता कपड़े, तो तुम्हारे हाथ में है अभी भी। स्वीटी को शर्माते हुए देखकर अरुण मुस्कुराया और उसके हाथ की ओर इशारा किया। स्वीटी ने बिना देखे अपना हाथ पीछे करके कहा, ये लो पकड़ो और पहन लो जल्दी से। अरुण जानबूझकर स्वीटी को छेड़ते हुए मुस्कुराया और उसके हाथ से कपड़े लेने लगा। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? कपड़े लेते वक्त स्वीटी का हाथ अरुण के हाथ से छू गया। स्वीटी ने झट से सारे कपड़े जमीन पर छोड़ दिए और बिना देखे कमरे से भाग गई। इसे क्या हो गया, कपड़े देने आई थी या इस तरह भागने? और कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है क्या तौलिये में? स्वीटी के भागने के बाद अरुण जमीन से कपड़े उठाते हुए खुद को शीशे में देखते हुए बोला, वो अच्छा खासा नौजवान था, उसकी बॉडी भी ठीक ठाक थी, हाइट भी स्वीटी से ज्यादा थी और दिखने में वो स्वीटी से 2 साल छोटा नहीं लगता था। जाने क्या हो जाता है इसे, कल रात भी ऐसे ही भाग गई थी, अरुण अपने कंधे उचकाते हुए खुद से बोला और फिर कमरे में कपड़े बदलने लगा। दूसरी ओर अपने कमरे में आकर स्वीटी भी खुद से यही सवाल कर रही थी, क्या हो जाता है स्वीटी तुझे, पागल है क्या, इस तरह क्यों भाग कर आई वहाँ से, क्या सोच रहा होगा वो, और उसे भाभी के बारे में भी नहीं बताया और ना ही उसे नाश्ते के लिए पूछा, इस तरह से भाग गई मैं, क्या करती हूँ मैं भी। स्वीटी अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, वो अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की ओर गई। उसे पता था कि गीता ऊपर सुनैना के साथ है, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं है, जरूर डॉक्टर आए होंगे। स्वीटी जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ डॉक्टर की जगह रवि को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। रवि भैया आप? स्वीटी दरवाजे पर रवि को देखकर हैरान हुई, उसे लगा था कि डॉक्टर आए होंगे। हाँ तो मैं कौन सा पहली बार आ रहा हूँ जो इतना हैरान हो रही हो, और वैसे भी अभी मैं तुम्हारी सुनैना भाभी को लेने आया हूँ, कहाँ पर है वो? दरवाजे पर खड़ी स्वीटी को किनारे हटाकर अंदर आते हुए रवि चारों ओर एक नज़र डालते हुए बोला, वो भाभी तो अपने कमरे में, और वो कैसे आपके साथ, और भैया कहाँ है, वो क्यों नहीं वापस आए? रवि के सवाल पर स्वीटी थोड़ा हकलाते हुए बोली, आदित्य सर ने ही मुझे यहाँ भेजा है मैम को लेकर आने के लिए, और ऐसे कैसे क्या कर रही हो? स्वीटी के बर्ताव पर रवि घूर कर बोला, हाँ भाभी ऊपर हैं और उनके पैरों में वो चोट। स्वीटी बोल ही रही थी कि रवि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अपने कमरे से तैयार होकर निकलते हुए अरुण स्वीटी की बात सुन लेता है और स्वीटी की ओर देखते हुए पूछता है, क्या हुआ दीको, कैसी चोट लगी है उन्हें, और तुमने मुझे बताया नहीं, वो ऐसे कपड़े फेंककर भाग आई, क्या हो जाता है तुम्हें? स्वीटी की थोड़ी सी बात सुनकर अरुण पूछता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और वो भाभी को ज्यादा चोट नहीं, वो बस कुछ दिन पहले उन्हें चोट लगी थी और आज जब तुम्हारे लिए वो कपड़े लेने जा रही थी तभी उनके पैर में। अच्छा तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मेरे रूम में आई थी? स्वीटी की बात काटते हुए अरुण पूछता है, अरे वो तब तक तुमने कुछ पहन नहीं रखा था तो मैं कैसे रुकती वहाँ पर ज्यादा देर, और फिर मुझे अपने बाल कान के पीछे करते हुए स्वीटी इधर उधर देखते हुए बोल रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से आवाज आई। दरवाजा खुला हुआ था तो दोनों मुड़कर उस ओर देखते हैं, डॉक्टर कुछ देर पहले फोन किया था वो आ गए थे। अपनी बातचीत को बीच में छोड़कर स्वीटी और अरुण दोनों डॉक्टर को लेकर सुनैना के कमरे तक पहुँचे, जहाँ रवि और गीता पहले से ही सुनैना के साथ थे। क्या हुआ मिसेस सिंघानिया, स्वीटी और अरुण से आगे चलते हुए डॉक्टर कमरे में आते हुए सुनैना से बोले। सुनैना पहले से ही रवि के साथ बातचीत में थी। डॉक्टर के आने पर सब चुप हो गए। आई एम फाइन डॉक्टर, वो तो बस ये सब मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, जरा सी चोट पर भी आपको परेशान कर देते हैं। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए सुनैना मुस्कुरा कर बोली, वेल लेट मी सी, और परेशानी की क्या बात, ये तो मेरा काम है। डॉक्टर आगे बढ़कर सुनैना के पैर में बंधी बैंडेज हो खोलकर चेक करने लगे। दरवाजे पर खड़े स्वीटी और अरुण एक दूसरे की ओर देखते हैं। नज़र मिलते ही स्वीटी दूसरी ओर देखने लगी। सुनैना को हिदायत देते हुए डॉक्टर बोले, जस्ट बी केयरफुल, आप भी अपने हस्बैंड की तरह बहुत केयरलेस है शायद। ठीक हो रही थी ये इंजरी आपकी, लेकिन आपने इस पर दोबारा चोट लगा ली, इसलिए ही आपको दर्द हुआ और ये थोड़ा सा ब्लड भी आया, बट मैंने साफ करके फिर से बैंडेज कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा तो एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुनैना हाँ में सिर हिलाती है। उसे पता था कि आदित्य भी बहुत केयरलेस है, लेकिन आखिर किस बात को लेकर। डॉक्टर की बात सुनकर रवि सुनैना की ओर देखते हुए बोला, मैम आप चल पाएंगी, क्योंकि आपका अभी मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं चल लूंगी, वैसे भी कार से ही तो चलना है, कौन सा पैदल जाना है। सुनैना रवि की बात का जवाब देती हुई बोली, ठीक है चलिए, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं भी चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और गीता भी डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि घर में उस वक्त नीचे कोई नहीं था। ठीक है मैम, मैं आपका बाहर कार में वेट करता हूँ, आप रेडी होकर आ जाइएगा। गीता और डॉक्टर के जाने के बाद रवि भी बाहर जाने लगा। सुनैना ने उसे रोका, एक मिनट रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या हुआ, बोलिए मैम, रवि सुनैना की ओर देखते हुए बोला। हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे आदित्य सर के ऑफिस, सुनैना रवि से सवाल करती है। यस मैम, ऑफिस ऑफिस नहीं बट वर्क प्लेस ही है, और आदित्य सर वहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं, रवि ने जवाब दिया। बहुत अजीब है ये आदमी, खुद नहीं आ सकता था, और वैसे भी अब ऑफिस से वापस आने का वक्त हो रहा है तो आया भी नहीं वापस घर, और मुझे भी बुला रहा है, वो भी पहली बार इतने महीनों में। सब ठीक तो है ना रवि, रवि की बात सुनकर सुनैना शक भरे अंदाज में पूछती है। यस मैम सब ठीक है, और आपके आने से जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ रवि कमरे से चला गया, सुनैना अरुण और स्वीटी को वहाँ छोड़कर। रवि के इस तरह से आकर उसे साथ ले जाने के लिए कहने पर सुनैना पहले से ही इतना कुछ सोच रही थी, रवि के जवाब पर वो और भी ज्यादा कन्फ्यूज्ड हो गई। तभी स्वीटी उसके पास आते हुए बोली, चलिए भाभी मैं आपकी सीढ़ियाँ उतरने में हेल्प कर देती हूँ। और मैं भी, बट ये आपके पैर में चोट कैसे लगी थी, अरुण सुनैना का हाथ थामते हुए बोला। सुनैना ने ना तो स्वीटी की ना अरुण की तरफ देखा, फिर अरुण की ओर देखकर बोली, कुछ नहीं, ये बस कप, वो टूटे हुए कप के टुकड़े पर पैर पड़ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
स्वीटी को पता था कि सुनैना झूठ बोल रही है, इसलिए वह उसकी ओर देखती है। सुनैना ने इशारे से अरुण को कुछ भी बताने से मना किया। स्वीटी ने उसका इशारा समझ लिया और अरुण से कुछ नहीं कहा। फिर सुनैना बात बदलते हुए अरुण से बोली, अरुण तूने कुछ खाया? नहीं दी, मेरा मन नहीं कर रहा था, वैसे भी मैं अब घर तो जा ही रहा हूँ, तो वहाँ जाकर ही खा लूँगा, सुनैना की बात पर अरुण बोला। अब तक वो दोनों सुनैना को पकड़कर रूम से बाहर आ चुके थे। क्या कर रहे हो तुम दोनों, रहने दो, मैं चल लूँगी खुद से, और स्वीटी तुम प्लीज़ अरुण को खाना खिला देना, और अरुण अगर ज़रूरी नहीं है तो तू घर पर फ़ोन करके कुछ बोल दे, और आज भी यहीं रुक जा, कम से कम मेरे वापस आने तक, क्योंकि स्वीटी अकेली होगी और तुम्हारे आदित्य जीजू का कोई भरोसा नहीं है कितनी देर लग जाए हम दोनों को, और वैसे भी तू ऐसी हालत में घर जाएगा ना तो तेरी माँ तुझसे 10 सवाल करेंगी। सुनैना स्वीटी और अरुण की ओर देखते हुए बोली। वो दोनों फिर से दूसरे के चेहरे की ओर देखते हैं और फिर एक साथ बोले, नहीं। क्या नहीं, ऐसा भी क्या करने को बोला मैंने तुम दोनों को? उन दोनों का नहीं में जवाब सुनकर सुनैना हैरान होकर पूछती है, रहने दो भाभी, मैं रह लूँगी, गीता दी तो है ना, और वैसे भी मुझे आदत है, मैं हॉस्टल में अकेली ही तो रहती थी, स्वीटी जल्दी से बात बदलते हुए बोली। हाँ दी, मैं भी बस शाम तक घर वापस चला जाऊँगा, दो बार माँ का फ़ोन आ चुका है, मैंने झूठ बोला कि रोहन के साथ काम से उसके गाँव आया हूँ, अरुण भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोला। अच्छा ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना, लेकिन अभी हो सके तो कुछ दिनों तक कॉलेज मत जाना, अरुण को समझाते हुए सुनैना बोली, और फिर उन दोनों के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। हॉल से होकर बाहर गार्डन एरिया की ओर जाने लगी, जहां कार खड़ी थी और उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा रवि सुनैना का इंतजार कर रहा था। क्रमशः